आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिक्स्थ चैप्टर ऑफ सिविक्स जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बड़े के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो अपने इस सप्ताह संचार माध्यमों में सीखी हो? तो इन सब चीजों का जो सवालों का जवाब है वो हमें इसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य है कि विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के एक ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। देखिए, आप एक किसी मेले में दुकान से लेकर किसी टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, उसे आप संचार का माध्यम या मीडिया कह सकते हैं। ये जो शब्द है ये अंग्रेजी के मीडियम शब्द का प्लूरल फॉर्म है जिसका मतलब होता है माध्यम। जहां हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे मीडिया कहा जाता है। मीडियम का अर्थ है माध्यम और मीडिया का जो कनेक्शन यहाँ पे है वो संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करना, टीवी पर शाम को समाचार देखना, इन सबको मीडिया कहा जाता है। और रेडियो, अखबार ऐसे जो मीडियम्स होते हैं जो कम्युनिकेशंस के, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों तक हम सूचना प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसको मास मीडिया कहते हैं। यहाँ साइड में देखिए एक ब्लू क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रश्न 70 पर दिए गए कोलाज में से संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकारों को छाटिए। तो वो आप करिएगा पेज नंबर 70 पर जब पहुंचेगा। ऊपर जो लिखा हुआ है ना, अलग अलग जो कम्युनिकेशंस हैं उसको आपको छांटना है। चलिए अब आ जाइए संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुआ है। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। मतलब जो हम मास कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जो है, तो अगर हम इसके बिना अपना जीवन सोचें तो वो बहुत मुश्किल होगा। केबल टीवी और इंटरनेट तो अभी कुछ सालों पहले ही आए हैं, मान लीजिए 20 वर्ष पहले आए हैं, लेकिन अब इनके बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं में छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। मतलब जो न्यूज़पेपर होता है, टेलीविजन होता है, हमारा टीवी, रेडियो होता है, इससे हम बहुत सारे ग्रुप को, मास पीपल को सूचना दे सकते हैं। और ये दो प्रकार में होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। तो अखबार होता है वो प्रिंट मीडिया और रेडियो टेलीविजन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रिंट मीडिया। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम में इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। मतलब नीचे आपको जो पिक्चर्स दी उससे आपको पता चलेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी में कितने सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। यहाँ साइड में देखिए एक पिक्चर बनी हुई है। एक चित्रकार की नजर में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। नाउ कम टू दीज क्वेश्चंस। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहले टीवी कब आया था, केबल टीवी कब शुरू हुआ था। तो ये आपको पूछना है, आपका काम है। सेकंड, आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको आपके पड़ोस से पूछकर पता चलेगा। थर्ड, ऐसी 3 चीजों की सूची बनाइए जो संचार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हैं और जिनके बारे में आपने टेलीविजन देखकर जाना है, तो ये भी आपको लिस्ट बनाना है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी मशीन्स हैं, इसकी वजह से ये जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है हमारी मीडिया में, अधिक से अधिक लोगों तक मदद मिल जाती है, उन तक मदद पहुंच जाती है, जो आवाज़ है, चित्र है, उनकी गुणवत्ता बढ़ गई है, तो तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है, हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। जैसे कि अगर हम आज बिना टीवी के बिल्कुल भी नहीं रह सकते, हमें टीवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बिल्कुल बिना टीवी के तो जीवन ही ऐसा लगेगा कि बहुत बोरिंग सा हो गया। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं, वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। जब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा वे समुद्र तूफान की छवियों को भी देख सकते हैं, टेलीविजन की दुनिया को बहुत पास ला दिया है। तो मतलब टीवी से हम हर जगह के बारे में देख सकते हैं, इसलिए हम टीवी को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। यहाँ साइड में देखिए, टाइपराइटर है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठा है, इसमें लाइटें, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। मतलब जो कम्युनिकेशन का, जो मीडिया का जो काम है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें से वो लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे वह प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने भी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलता रहता है, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। मतलब जो न्यूज स्टूडियोज होते हैं, वहां पर सिर्फ जो समाचार बोलता है, जो रिपोर्टर होता है, सिर्फ उसको पैसे नहीं मिलते, बाकी जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको भी मिलते हैं। और जब टेक्नोलॉजी इतनी चेंज होती जा रही है, तो नई टेक्नोलॉजी लाने में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जितने भी टीवी चैनल वगैरह होते हैं, किसी बड़े आदमी के, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसका एक भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारों, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। मतलब जो ये कम्युनिकेशन वाले हैं, जो मीडिया है, ये लोग ज़्यादातर पैसे कमाने के अवसर ढूंढते रहते हैं, जिसमें से सबसे मेन है एड्स। कारों का एड, चॉकलेट का एड, कपड़ों का एड, जिससे इनको बहुत पैसे मिलते हैं। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर कवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाई जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हें छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे। कम टू दिस क्वेश्चन, पहले यहां पर इस यंत्र पर आ जाइए। यह यंत्र टेलीवाइजर है, टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल ब्रैड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। कम टू दिस क्वेश्चन, अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापन होने वाली तीन चीजों की सूची बनाइए। देन सेकेंड इज, एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं, क्या आप सोचते हैं कि ये बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? तो ये आपको जानना है। कम टू नेक्स्ट पेज, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। तो एड्स क्यों दिए जाते हैं? तो ताकि आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो चीजें आप बाहर जाकर खरीदेंगे। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। एक टीवी चैनल के 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपए से 1,00,000 रुपए के बीच पड़ता है, मतलब इतना कॉस्टिंग लगता है। अब आ जाइए संचार माध्यम और लोकतंत्र पर। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो चीजें जनता को सरकार के बारे में नहीं पता होती है वो संचार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमें पता चल जाती है। तो हमारा जो ये पब्लिक प्रोटेस्ट होता है उसको आयोजित करवा कर और ये सारी चीजें करवा कर मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। चलिए देखते हैं कि क्या बैलेंस्ड एक मीडिया क्या होती है। पहले यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम की कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, प्रदूषण फैलने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका, मतलब इन लोगों ने प्रदर्शन किया तो उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग गया। राधिका मलिक INN, कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय पर विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया तो परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर में गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्रों के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब उसमें बताया जा रहा है कि ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, सरकार उसको बंद करने के लिए बोल रही है। तो वहां के जो वर्कर्स हैं और जो ओनर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कैसे फिर मतलब अपना काम चलाएंगे। लेकिन वहां के एक व्यक्ति, उन्होंने बोला है कि हमारा जो शहर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदलता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन इसको हरा भरा रखना भी जरूरी है, इसलिए ये जो कारखाने हैं इनको बंद होना जरूरी है। इंडिया डेली की रिपोर्ट, कारखाने को बंद होने से घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1,00,000 कारखाने का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाने मालिक व कामगार कारखाने बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोटी रोजी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये दो अलग अलग न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट आपको दिखाई गई है। इसमें देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित कराता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो मतलब एक ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि क्या चीज है, एक्चुअल में उस चीज से रिलेटेड सारे पहलू दिखाने चाहिए, उसके बाद जो पढ़ते हैं वो अपना डिसीजन खुद बना लेते हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्रता होने पर निर्भर करता है, स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों में कोई भी नियंत्रण या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। देखिए, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट तभी हो सकती है जबकि जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स है वो काफी फ्री हो, उस पर किसी का कोई प्रभाव ना हो, तभी हो सकता है। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि तब ये संतुलित रिपोर्ट बन सकती है जब किसी का इस पे कंट्रोल ना हो। नाउ कम टू दीज टू क्वेश्चंस, क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपरोक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार से इनमें क्या क्या समानताएं और अंतर है? तो आप दोनों को दोबारा पढ़िए और फिर बताइएगा। यदि आप न्यूज ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे कि ये लोग जो चक्का जाम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और हमें हमारे मन में इनकी बहुत बुरी छवि बन जाएगी। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। मतलब जो कम्युनिकेशन के द्वारा हमें जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है उस पर ही हम अपना सोच बताते हैं, अपना आधार प्रकट करते हैं। तो ये जरूरी है कि जितनी भी जानकारी हमें मिले वो सही हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण, सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्त को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंध करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो मीडिया है वो फ्री नहीं है, क्योंकि सरकार का इस पर कंट्रोल है। मान लीजिए कोई भी समाचार है या कोई भी फिल्म का दृश्य है या गीत है, उसको जब टेलीकास्ट जब होता है और जब वो लोगों को दिखाया जाता है, उसमें से जब उसे रोका जाता है, कुछ बैन किया जाता है, तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे भी समय आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975-77 तक आपातकाल का था। इमरजेंसी के टाइम पर सेंसर लगा दिया गया था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचार की पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। सेंसरशिप नहीं होती है तो भी वो लोग नहीं दे पाते हैं, और बेसिकली न्यूज वगैरह पे ये ज्यादा नहीं लगता है। नाउ कम टू दीज टू क्वेश्चंस, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है? क्यों? मान लीजिए कि आप किसी समाचार के पत्रकार हैं। अब आप उपयुक्त दोनों विवरणों में से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो ये आपका काम है। यू विल हैव टू नाउ कम टू दिस ऑरेंज बॉक्स। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं? बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे कि बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। मतलब टीवी एक छोटी सी खिड़की के समान है जिससे हम पूरा विश्व देख सकते हैं। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन आते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीजों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के? दोनों के बारे में दिखाता है, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से हो या चाहे वो किसी धारावाहिक के माध्यम से हो। हमें यह सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हम यह नहीं भूलना चाहते कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। मतलब हम जब टीवी में जो देखते हैं हम वैसे ही अपनी सोच बना के रख लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि टीवी एक वर्चुअल वर्ल्ड है और जिसमें हम जीते हैं वो एक रियल वर्ल्ड है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनागण जीवन शैलियों से भरे से परे भी एक संसार है जहाँ हम सबको पहुँचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। तो मतलब हमें एक बहुत ही जागरूक दर्शक होना चाहिए। समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यम पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के पक्ष के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापन पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। देखिए, इसके कारण ये हैं कि बहुत सारी ऐसे माध्यम हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले लोग चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि संचार माध्यम कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों का एक कंट्रोल किया जाता है। जो बहुत पैसे वाले होते हैं उनके ऐसे चैनल्स वगैरह होते हैं, तो कई बार इसकी वजह से हम एक ही किसी पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। इसकी वजह से संतुलित हम रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि ये एक पक्ष पर हम ज़्यादा दिखाएंगे, टेलीकास्ट ज़्यादा करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और लोग ज़्यादा देखेंगे, हमारी TRP बढ़ेगी। नाउ कम टू मसौदा तय किया जाना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इनमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। मतलब कौन सी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, किस पर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कौन सी चीज़ समाचार पत्र में देनी है और किस में नहीं देनी है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि से समाचार से सम्मिलित करने में हो सकती है। मतलब आपके अगर स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल वो पेपर में छपे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, सभी स्कूलों में होता है, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी वहाँ पर आ रहा है तो फिर वो चीज़ पेपर में छप सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर जो हमारी मीडिया है वो हमारा ध्यान केंद्रित करती है तो हमारे जो विचार है, हमारे जो इमोशंस है उसके हिसाब से ही बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एजेंडा और हमारा मसौदा यही मीडिया तय करती है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों के अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। मतलब जो कोला ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ किया जाता था उसके बारे में मीडिया ने हमें बताया और इस चीज़ की रिपोर्ट प्रकाशित करी ताकि लोग अवेयर हो जाएं। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निर्दयतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो सोचिए, हम कोला के बारे में इतना सोचते भी नहीं, हम बड़े अच्छे से बड़े मजे से पीते रहते हैं। अगर मीडिया के द्वारा हमें नहीं पता चलता तो शायद हम कभी इस पर ध्यान भी नहीं देते। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए देखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकर देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टी को गिरा दिया गया और किसी ने इस पर जरा सी भी ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो घटनाएं दिखाई जाती हैं जो हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, और वो नहीं दिखाई जाती जो हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी डिजाइनर ने अपना फैशन वीक रखा था, तो उसमें वहां पर वो मॉडलिंग करवा रहा था, सब कुछ करवा रहा था, फैशन शो कर रहा था, वो अखबार के पहले पन्ने पर छपा है। लेकिन जो वहां मुंबई में उसी टाइम पर उसी हफ्ते में कुछ बस्तियां गिरा दी गई थी, तो उसके बारे में वहां पर कुछ भी छपा ही नहीं है। यहाँ साइड में पिक्चर देखिए। संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए। संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है, ये आपको बताना है। आपकी राय मांगी है इसने। क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यम में उसे दिखाया नहीं गया था, ये भी आपको बताना है। वेलकम टू दिस ऑरेंज बॉक्स, स्थानीय संचार माध्यम। यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों पर रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह एवं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। मतलब हमें ये पता है कि जो मीडिया है वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा और उन लोगों पर ध्यान नहीं देगा जो कि बहुत सिंपल हैं। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप्स आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का परीक्षण भी देते हैं। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें ये तब करते हैं ताकि हम ऐसे पहलू से भी जुड़ें जो कि समाज की वास्तविकता है। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। तो यहाँ पर जो खबर लहरिया नामक एक न्यूज़पेपर है जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जो दलित महिलाएं हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। तो सोचिए आप कितना बड़ा इनिशिएटिव ये लोग लेते हैं ये काम करके। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह एक वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मतलब हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल और बहुत सारी चीज़ें सरकार के बारे में हमें बताती है ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन कई बार सरकार कोई ऐसी खबर होती है जिसे रोकने से मीडिया को मना कर देती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार के प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती हैं। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण में लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। यहाँ नीचे आपको एक सामाजिक विज्ञापन दिया हुआ है पिंक कलर के बॉक्स में। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग के पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। मतलब सरकार हमारे लिए ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है पता करना। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब फाटक लगा हुआ है तब आपको रेलवे क्रॉसिंग नहीं क्रॉस करनी है। अब आ जाइए अभ्यास प्रश्न पर। पहला है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वो हमें सरकार के प्रति पारदर्शिता का अनुभव करवाते हैं। सेकंड, क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं? इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं? बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्रों के मालिक हैं, अपने उत्पादों का विज्ञापन दे रहे हैं, संचार माध्यम ये सारे हैं, विज्ञापनों के उत्पादों को बढ़ावा देता है, पाठक दर्शक श्रेता लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापस उन्हीं व्यापारियों प्रतिष्ठानों को जाता है। तो इसके बेसिस पर आपको बताना है कि आप क्या समझ पा रहे हैं। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, अपने विचारों के पक्ष में दो उदाहरण दीजिए, तो ये आपको बताना है। कम टू फोर्थ क्वेश्चन। कक्षा परिजनों के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उसे संबंधित वितरण छाटिए। दूरदर्शन समाचार पत्र पर 20 विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। दो समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उनमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। पहला, इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है? दूसरा, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है? तीसरा, यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है? और चौथा, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों? तो ये सारे आपको क्वेश्चन पूछने और ये एक्टिविटी अपने क्लास में करनी है। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। विज्ञापनों के प्रकार के बारे में अकेले जोड़ी या समूह में प्रोजेक्ट बनाए। कुछ उत्पादों के बारे में वाणिज्यिक विज्ञापन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, जल व ऊर्जा को बचाने के लिए जरूरत सामाजिक विज्ञापन बनाएं। तो ये भी आती है एक्टिविटी आपको करना है। अब आ जाइए शब्द संकलन पर। पहला है प्रकाशित। इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार विवरण आदि से है जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। दूसरा, सेंसरशिप। इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति का अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। मतलब जो मीडिया है उस पर किसी चीज के, किसी कोई रिपोर्ट पर या किसी पिक्चर, किसी गाने पर रोक लगा सकती है कि आप उसे नहीं दिखा सकते बाकी लोगों को। तीसरा, प्रसारण। इस पाठ में शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रम से संबंध में हुआ है जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है, मतलब एडवर्टीजमेंट जिसे बोला जाता है। फोर्थ है सार्वधिक विरोध। इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है, मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट जिसे बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।